तो इंडिया वैसे वर्ल्ड लीडर कैसे बनेगा?
आप ज्यादा समय निकाल रहे हो किसकी किसका इतिहास लिखने के लिए, कौन सी भाषा सिखाने के लिए, शहर का नाम बदलोगे? अरे साइंस सिखाओ ना। साइंस में न धर्म है न जाति है, खाली 10% स्कूलों में इंटरनेट है सरकारी स्कूल्स के, और आप कहते हो पूरा दुनिया को हम सिखाएंगे। अरे तुम्हारे खुद के लोग को जानते हैं, कुछ जानते नहीं है, और वो वोटर्स है तो अल्प बुद्धि वाले आपको वोट करेंगे। तो जो हम कहते हैं, हम कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, मेंढक का मेंढक का जो वो है दुनिया है वो अपने कुएं में है, हम वैसे हैं। अरे अपना देश बढ़ रहा है, दूसरों को देखो कितना बढ़ रहा है चाइना में। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है पर एम्प्लॉयबल नहीं है।
व्हाट डू यू फील कि ये इंडिया का गोल्डन टाइम है कि नहीं है? व्हाट्स गोइंग ऑन?
लास्ट टाइम ये गेस्ट जब हमारे पॉडकास्ट पे आए थे आर्यन भास्कर, तब इन्होंने हमें बताया था कि गौतम अदानी की जीरो से लेके आज तक की पूरी जर्नी कैसे हुई, वो कैसे इतने बड़े आदमी बने। इस बार हमने उनसे बात करी उनकी नई बुक पे गेम इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया सुपर पावर कैसे बन सकता है। ये पॉडकास्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट पूरी एक स्टोरी है अबाउट इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, और गवर्नमेंट उसको कैसे किल कर रही है, तो आप और मैं और गवर्नमेंट कैसे मिलकर उसको बचा सकते हैं बेस्ड ऑन हिज ओपिनियन। तो हमने वो समझने की कोशिश करी कि इंडिया मिल्क का सबसे बड़ा सप्लायर बना कैसे, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी है, इंडिया चाइना को कैसे हरा सकता है, इंडिया अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड से क्या सीख सकता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन टुडेज़ एपिसोड। आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको समझना है कि इंडिया में बिजनेस कैसे करें ताकि हम ग्लोबल सुपर पावर बन सकें। और पार्ट टू इसके बाद अगले पॉडकास्ट में आएगा, जिसमें हमने ये बात करी है कि धीरूभाई अंबानी की स्टोरी कैसे स्टार्ट करी, क्योंकि उससे पहले जिन्होंने उनको लोन दिया था उनकी एक पूरी अलग कहानी है। अगर वो गांव में स्टार्ट नहीं करते तो आज शायद रिलायंस होता ही नहीं। और अगर आपको ये लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत लंबा है तो आप जाके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं राजशुमानी क्लिप्स चैनल पे, जहाँ पे हम इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं और बहुत ही कम टाइम में आपको स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको सीखना है कि इस कंट्री में आप लीडर कैसे बने तो प्लीज़ फॉलो राजशुमानी क्लिप्स एंड एन्जॉय टुडे शो।
मैं ये किताब मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो सरकार की पॉलिसीज है वो ठीक रास्ते पर नहीं जा रही है, ये सरकार की पुरानी सरकार की भी। ये किताब लिखी गई थी जब पुरानी सरकार थी, और जब छापा गया था 2019 में तो मोदी सरकार थी। तो जब 2014 में मैंने जब ये किताब लिखी या लिखना चालू किया तो मुझे आशा थी कि शायद ये सरकार पुरानी सरकार से अलग होगी। वास्तविकता में कुछ चेंज नहीं हुआ है।
सो ये वाली जो करंट गवर्नमेंट है अभी, इनकी पॉलिसीज चेंज
नहीं, ठीक तरीके से नहीं जा रही है। और इसमें जो कहानी कुरियन के बारे में लिखा गया है, मैंने ये भी लिखा हूं क्यों ये सरकार, ये जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनाए मिल्क का, दूध का, उसको वो भी जो खास बात है इंडिया की उसे भी बर्बाद कर सकता है।
ओके, एलैबोरेट मोर, मतलब कैसे, क्यों ऐसा?
देखो इसके लिए आपको कुरियन की कहानी सुननी पड़ेगी।
कुरियन इज
वर्गीस कुरियन, एक छोटा आदमी था, उसके कई कहानियां हैं। पर एक रात को हम जब बैठे थे आनंद में, आनंद जगह के नाम है, आनंद खुशी की बात नहीं पर आनंद जगह
गुजरात में आनंद,
और वहाँ कुरियन अपने ऑफिस में पूरी रात तक मिडनाइट तक बैठा रह करता था। जब भी मैं जाता था तो बोलता था चल बैठो, और अपनी विस्की की बॉटल निकालता था या रम की बॉटल निकालता, उसको पीना शाम को काम होने के बाद एक ग्लास चाहिए था, कभी कभी 2 ग्लास ले लेता। तब बात कर रहे थे, एक शाम वो एकदम मूड में था तो मुझे बताया कि मतलब उन्होंने बताया कैसे उनको उसको वो एक अबैंडन चाइल्ड थे जिसके बारे में कोई संभाल नहीं कर सकता था। उस समय चर्च के जो मिशनरीज है उसको लेकर अपने मिशनरी में उसे बढ़ाया, और क्योंकि मिशनरी में था उसने अंग्रेजी सीखा। अंग्रेजी सीखा तो उसे सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी उसमें नौकरी मिली, और नौकरी जब मिली तो उसके सब अकाउंट सब जो रिकॉर्ड्स थे वो कुरियन संभालता था। फिर एक दिन उसे सरकार ने बोला, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ रहा है, हमें दूध की खास ज़रूरत है, आप अपने जो कैरा डिस्ट्रिक्ट है उधर, आनंद उसमें एक मुख्य गांव था, आप कैरा डिस्ट्रिक्ट में जाओ, वो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन उस जगह हो रहा है, आप उधर जाओ, उधर कितना दूध निकलता है, कितना दूध बेचा जाता है बम्बई में और कितना दूध नहीं बेचा जाता है बम्बई में, वो सब लिख कर आओ।
ओके।
और हर हफ्ते उसे भेजना था उधर।
तो आनंद से दूध बम्बई में बिकता था।
हाँ।
आनंद वही जगह जहाँ पे अमूल,
जहाँ अमूल है।
ओके। तो ये अमूल के पहले की कहानी है।
अमूल के पहले।
ओके। अमूल अभी तक नहीं बना।
नहीं, अभी अमूल उस समय नहीं था। ये 1930s की कहानी है।
ओके।
30-40 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था।
ठीक है।
और सोल्जर्स को दूध की जरूरत थी, तो इसलिए ब्रिटिश सरकार को दूध का प्रोडक्शन में बहुत ध्यान दे रहे थे। ये सब हो रहा था, फिर अचानक से ब्रिटिश सरकार से एक संदेश आया, उसके ऑफिसर ने बुलाया, उसने बोला तुम्हें एक स्कॉलरशिप दिया जाता है टू लर्न पैस्चराइजेशन।
पैस्चराइजेशन,
दूध को कैसे उभार कर उसके लाइफ स्पैन कैसे बढ़ाते हैं, उसको आप सीखने के लिए लंदन का, आपको लंदन का स्कॉलरशिप मिला है। तो कुरियन ने बोला पर मुझे पढ़ना है न्यूक्लियर फिजिक्स, मुझे पैस्चराइजेशन नहीं पढ़ना है। तो उसके ऑफिसर ने समझाया, देखो बेटा तुम्हें स्कॉलरशिप मिला है, तुम यूके जाओ, उसके बाद इधर आ जाओ। तो बहुत सोचा, वो सो बहुत सोचने के बाद उसने कहा नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है। तो ठीक है, स्कॉलरशिप मिला तो उसे जहाज का टिकट मिला, और टिकट लेकर एडन तक गया, वहाँ जहाज से उतर गया, वापस नहीं आया उस जहाज में, और दूसरे जहाज में वो सीधा अमेरिका गया जहाँ उसके कोई कनेक्शंस थे, और उधर एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, उसने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ लिया। और रिटर्न ऐसी तरीके से टाइमिंग किया जैसे जो बम्बई में ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने सोचा उसने पैस्चराइजेशन के सीखकर बम्बई आया वापस।
ठीक है।
तो जब उसे जब वो वापस आया तो ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा अब तो पैस्चराइजेशन सीख कर आए, अब जाकर पैस्चराइजेशन प्लांट बनाओ। अपने उससे कहा मैंने पैस्चराइजेशन नहीं सीखा बाबा। तो बोला क्या सीखा? बोला मैं न्यूक्लियर फिजिक्स किया, इसे पर न्यूक्लियर पर तो स्कॉलरशिप उसको पैस्चराइजेशन का था। तो उसने समझाया कि कैसे उसने
अमेरिका गया और
बोट जंप किया, कैसे वो दूसरी जगह चला गया। बोला इसके बारे में किसी को बताना मत, तुम कोर्ट मार्शल किए जाओगे, क्योंकि तुमने ब्रिटिश सरकार का पैसा कमाया है और उनके आदेश के खिलाफ गए हो। ठीक है। तो कोई ने किसी को बताया नहीं कि उसने न्यूक्लियर फिजिक्स किया, पर आदेश आया था कि उसको पैस्चराइजेशन प्लांट बनाना। तो वो आनंद गया, हर एक जगह देखा कि उसके पास कोई आदमी है जो पैस्चराइजेशन प्लांट कर सकता बना सकता था, किसी के पास जानकारी नहीं थी। तो उस समय वो विदेश में गया, जो भी फॉरेनर्स थे उनसे बात की, कोई भी इंडिया को टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं था। उस समय एक इंडियन कंपनी में, एक इंडिया में कंपनी थी नेस्ले, जो पैस्चराइज अच्छी तरह जानती थी। तो नेस्ले के पास गया,
स्विट्जरलैंड कंपनी,
उनके मैनेजिंग डायरेक्टर से कैसे कनेक्शन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू कनेक्शन निकाला। वो सीधा नेस्ले के मैनेजिंग डायरेक्टर मिला, बोला देखो मुझे पैस्चराइजेशन सीखना है, ब्रिटिश सरकार ने बोली है कि मुझे पैस्चराइजेशन प्लांट लगाना है। बोला ब्रिटिश सरकार हमारी टेक्नोलॉजी, हमें रॉयल्टी दे देगी, हम बना देंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है। वो बोला हमें इंडिया में बनाना है। बोला बनाओ, हम बनाएंगे, वो मुझे सीखना है। इसे तुम बंदरों को सीखा सीखने तुम बंदरों सीखने के लायक नहीं हो। तो कुरियन को बहुत गुस्सा आया, बोला ठीक है मैं उन्हें सिखाऊंगा। तो अपने न्यूक्लियर फिजिक्स की जानकारी के द्वारा अपने ही दिमाग से उसने पूरा पैस्चराइजेशन का प्लांट का डिजाइन बनाया और पैस्चराइजेशन प्लांट फाइनली स्थापित किया। तो किसान सब कुरियन के पास गए और बोले आप कोऑपरेटिव हमारे बनाएंगे? बोले ठीक है। तो कुरियन ने अपना दिमाग लगाया, सभी दुनिया में जो भी कोऑपरेटिव थे उसके लॉज निकाले, इंडिया के क्या सिचुएशन है उसके आधारित उन्होंने कोऑपरेटिव लॉज चेंज करके एक नया कोऑपरेटिव एक्ट बनाया। और सबसे पहला कोऑपरेटिव था वो कैरा मिल्क कोऑपरेटिव बनाया। और अगर कैरा की कहानी आप सुनना देखना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी मूवी है मंथन, जिसमें श्याम बेनेगल है, स्मिता पाटिल है, वो कायरा की कहानी है।
ओके।
पर वो छोड़ दीजिए। जब कोऑपरेटिव बना तो कुरियन पूरी मिल्क इंडस्ट्री की बहुत ही सीरियसली स्टडी करने लगा। और जो कुछ भी अभी मैं कह रहा हूं वो कुरियन से मैंने सीखा हूं।
ओके।
तो एक रात को, एक शाम को कुरियन और मैं साथ में बैठे थे और कुरियन ने पूछा, भास्कर आपको मालूम नहीं हो, मालूम नहीं है, पर मैं कह रहा हूं अगले 10 साल में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा दूध मिल्क प्रोड्यूसर हो जाएगा। अब कुरियन बहुत ही महान आदमी थे तो मैंने आदर के साथ
हाँ बोले,
सर झुका, सर आगे पीछे किया। तो 2 मिनट के लिए वो कुछ नहीं कहा, फिर गुस्से में अपना ग्लास थाम कर टेबल पर रखा, से तुम क्या सब तुम गाय हो क्या सर, ऊपर नीचे करते हो, तुमने पूछा नहीं क्यों कैसे? तो मैं चौंक गया, मैंने कहा सर कैसे? से देखो, अगर आप तो देखोगे इस इंडिया में इंडियंस का सबसे इंपॉर्टेंट खाने की चीज क्या है, तो मैंने कहा गेहूं, व्हीट जिसे आटा बनता है, जैसे चपाती बनती है, बाजरा, ज्वार, चावल, ये मेन आइटम्स है।
ये मेन
और साथ साथ में वो सब्जी आती रहती है, सब्जी बनती रहती है। बिल्कुल सही है, उसने कहा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया में कितने लोग हैं? मैंने कहा उस समय मैं 1990s की बात कर रहा था, मैंने कहा 850 करोड़। बोला बिल्कुल ठीक। अभी इतना याद रखो, आपको आपके पास 850 करोड़ लोग हैं, कोई भी सरकार जो होगी उसका पहला कर्तव्य यह है कि हर एक आदमी को खाने पीने के लिए रोटी मिले। कुछ भी करेंगे पर आपकी रोटी को बंद नहीं करेंगे, नहीं तो आंदोलन होगा और सरकार मिटेगी।
सही है,
इसीलिए फोकस रहेगा सरकार का कि खाना उत्पादन होगा और खाने के लिए गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा बनेगा। मैं कहा ठीक है। इससे तो मैं मान ली कि 1 किलो चावल के लिए, 1 किलो गेहूं के लिए आपका 4 किलो भूसा निकलता है। वो जो डांडी रहती है, फिर जो उसका हस्क रहता है, वो सब भूसा रहता है। तो 1 किलो चावल के लिए आपको 4 किलो भूसा मिलता है, जो गाय को चबाने के लिए चाहिए वो हम फ्री निकालते हैं, हमारा बाय प्रोडक्ट है। दूसरे देशों में गाय को संभालने के लिए उनको अलग ग्रो करना पड़ता है गाय को खाने के लिए, इंडिया में ग्रो करने की जरूरत नहीं है, उगाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि वो फ्री में मिलता
है, वो बाय प्रोडक्ट है, उसका प्राइस दोगे पर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 0 है। इसे ये फायदा जो भारत के पास है किसी के पास नहीं। तो मैं सोचा, मैंने कहा सर पर चाइना, तो वहां से बोला हाँ तो ठीक हो, चाइना के पास ये एडवांटेज है क्योंकि चाइना भी राइस खाती है, पर यहां भगवान ने इंडिया पर जरा अपने आशीर्वाद दिए हैं, भगवान दयालु है, क्योंकि चाइना दूध नहीं पी सकता, दूध उसके पेट में पचता नहीं है। इंडिया के लिए डोमेस्टिक मार्केट है मिल्क का, इंडिया इज अ नेचुरल बेनिफिशियरी। जो एडवांटेज इंडिया को मिलेगा वो चाइना को नहीं मिल सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर हो सकता है क्योंकि हमने कोऑपरेटिव चालू किया है और कोऑपरेटिव में फार्मर की जो जो प्राइस मिलता है दूध के लिए वो इतना अच्छा है कि वो ज्यादा ज्यादा दूध प्रोड्यूस करेगा दिन ब दिन। अगर आपको मिल्क प्रोड्यूस ज्यादा करना है तो उसके लिए 3 कंडीशन सबसे जरूरी है। 1, फार्मर को कभी नुकसान नहीं आना चाहिए। हर साल प्राइस अगर ऊंचा नहीं बढ़ा सकते हो, गिरना कभी नहीं चाहिए। जिस दिन प्राइस गिरा, किसान अगले साल के लिए नया गाय नहीं खरीदेगा। तो 1, आपको प्राइस स्टेबिलिटी लाना है
मिल्क में।
दूसरा, आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में डिमांड से सप्लाई से ज्यादा डिमांड होना चाहिए, तो आपको डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। और तीसरा कंडीशन ये है कि किसी को भी परमिशन नहीं दी जा, किसी को भी छूट नहीं दी जानी चाहिए जिससे वो मार्केट में फार्मर का प्राइस घटा सके। इसका मतलब इंपोर्ट्स नहीं अलाउ है, इंपोर्ट्स अगर अलाउड है तो उसको संभालना पड़ेगा। कैसे संभालना पड़ेगा? उसके लिए जब 1960s में जब कायरा कोऑपरेटिव बन चुका था तो लाल बहादुर शास्त्री वो पहला प्रधानमंत्री था जो अच्छी तरह समझा कि कुरियन का काम लाजवाब है और पूरे देश को बदल सकता है। तो कुरियन से कहा मैं आपकी जगह को देखना चाहता हूं, अगर हो सके 2-3 दिन आपके किसानों के बीच में रह सकता हूं। तो मुझे कुरियन हंसकर बोल रहा है, वो उसको मालूम नहीं था कि उसको झोपड़ी में रहना था, उसकी झोपड़ी में रहने के लिए कितना में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना पड़ा वो साधारण आदमी को कभी नहीं मिलेगा। पर फिर भी शास्त्री की जिद थी तो झोपड़ी में रहा 3-4 दिन। हर एक दिन वो किसान खेतों में जाता था, किसानों से मिलता था, जहाँ से दूध कलेक्शन होता वो भी देख रहा था। और वो समझ गया जो कुरियन कर रहा था वो बिल्कुल अजीब था, अद्भुत था। उसे कुरियन वो उसने तो शास्त्री ने कुरियन को बाद में लास्ट दफा बोला जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छा है, जो कुछ भी सरकार कर सकती है आपके मदद के लिए मुझे कह दो, आपको जो कुछ भी चाहिए मुझे कहो मैं करवा कर दिखाऊंगा। तो कुरियन ने शास्त्री को मुझे कहा मेरी एक ही खाली रिक्वेस्ट है, 1960s में मेरी खाली एक ही रिक्वेस्ट है। प्रसाद बोले कहो। इसे मुझे एक नया ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करना चाहता हूं, उसे कह दीजिए NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड।
ओके,
मैं उसको सेटअप करना चाहता हूँ, उसके लिए आपका परमिशन चाहिए। और उसके लिए उसका मेन कंडीशन, दो मेन कंडीशंस हैं, एक जो भी इंपोर्ट आता है खरीदार के रूप में आप खरीद रहे हो मार्केट से वो भी, और जो गिफ्ट देता है कोई देश, भारत पुअर, इंडिया पुअर देश है, उसको गिफ्ट के रूप में आप दूध का प्रोडक्ट्स दे रहे हो, जो भी गिफ्ट है वो भी NDDB को दिया जाएगा।
ओके,
और NDDB उसको मार्केट में बेचेगा खाली उस प्राइस पर जो किसानों के प्रोडक्ट बिकते हैं। तो मार्केट का प्राइस कभी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो एक कंडीशन है कि आप इंपोर्ट्स अलाउ नहीं करोगे प्राइवेट सेक्टर से, और जहां भी इंपोर्ट्स गिफ्ट आएगा तो NDDB के थ्रू ही जाएगा। शास्त्री समझ गया, जब दिल्ली पहुंचा उसने सीधा चिट्ठी सबको लिखा, वी आर सेटिंग अप अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन और NDDB पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट NDDB वॉज क्रिएटेड। अब उन दिनों किसानों को ठीक प्राइस मिले उसके पीछे भी एक फिलॉसफी थी। कुरियन ने सबसे पूछा, देखो भाई अगर एक आदमी गाय रखता है, दूध प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद में आप आ रहे हो मार्केट करते हो, एक और आदमी आता है पैकेजिंग करता है, उन तीनों में से कौन सबसे इंपॉर्टेंट है? अगर सबसे पूछो जो आदमी प्रोड्यूस करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर ना मार्केटिंग रहेगा ना पैकेजिंग रहेगा,
कुछ भी नहीं रहेगा।
इस अगर वो सबसे वो प्रोड्यूस करता है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका सबसे बड़ा शेयर मिलना चाहिए। अब पूरे दुनिया में उन दिनों से आज तक 1/3 किसान को जाता है, 1/3 पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के लिए जाता है, और 1/3 मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है। कुरियन से यह नहीं चलेगा, किसान को कम से कम 50% देना चाहिए। बोला यह असंभव है, उनको 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 भी पैसा चाहिए। तो कुछ भी करो, 50% से कम अगर फार्मर को दोगे तो मैं तैयार नहीं हूं। तो उन्होंने बोला हम नहीं कर सकते इसमें, तो इसमें मत करो, मैं करके दिखाऊंगा।
ओके
तो वहां कायरा में उसने अपना खुद प्रोसेसिंग यूनिट चालू किया, क्योंकि उसको मालूम था पास्टराइजेशन कैसे करना है। खुद पैकेजिंग किया और उसने डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स का शुरुआत उधर से की थी। आज किसान को मिनिमम 70% अधिकतर 85% जो मार्केट प्राइस का है उसका शेयर मिलता है। उसने पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक्स थी बदल दी। उसने दिखाया दुनिया को जब तक किसान को ज्यादा नहीं मिलेगा वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा।
तो ये कोऑपरेटिव क्या नाम है इसका भी, क्या है?
वो कायरा कोऑपरेटिव थी। फिर कायरा कोऑपरेटिव के बाद में दूसरी कोऑपरेटिव बनाया, फिर तीसरी कोऑपरेटिव बनाया, टोटल 18 कोऑपरेटिव बनाए। और वो सब 18 कोऑपरेटिव को हार्मोनाइज करने के लिए कि सब साथ में काम करें, उसने एक फेडरेशन बनाया। वो फेडरेशन का नाम था गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, GCMMF। और अमूल जो ब्रांड है
वो GCMMF
संभालता है। तो जब जो भी प्रोडक्ट है GCMMF से निकलता है। आज GCMMF दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स कंपनी है। आज जो अमूल है देश का नहीं पूरे एशिया का, शायद दुनिया का भी, पर एशिया का पक्का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल ब्रांड है। आज 24% जो मिल्क का है, जो पूरा मिल्क प्रोडक्शन है, 24 या 25% अमूल ब्रांड के नाम से बिकता है
वर्ल्ड का,
इंडिया का,
इंडिया को।
ओके और एक और चीज है कि अमूल जो ब्रांड है वो उसके अंदर उसके अमूल ब्रांड से आप दूध बेचते हो, दही बेचते हो, जो भी मिल्क प्रोडक्ट है, आइसक्रीम है, उसका अमूल के नाम पे जाता है। आज जो है मिल्क का शेयर इंडिया के जीडीपी में 5.3% है। मिल्क का शेयर जो जीडी जो अपने इंडिया के जीडीपी एग्रीकल्चर के जीडीपी है 24% शेयर है। क्वार्टर एग्रीकल्चर का जो जीडीपी शेयर है वो मिल्क के हाथ में। और उतना ही नहीं, एक और चीज है कि जो मिल्क का जीडीपी है वो राइस और व्हीट को दोनों को जोड़ने के बाद मिल्क का शेयर ज्यादा है।
ओके
अगर आप सरकार को देखोगे, कोई भी सरकार 1960 से आज तक जितना पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, जितना पैसा जाता है सरकार से, वो राइस एंड व्हीट के लिए ज्यादा आता था, मिल्क के लिए कुछ नहीं। और मिल्क सरकार के पैसे के का कोई भी पैसा नहीं लिया, विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट मिल्क इतना सबसे बड़ा इंडस्ट्री बन गया। जब कुरियन ने कहा 1990 में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होगा, 2001 तक इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड।
एंड वी स्टिल आर तो गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है? यू सेड कि
गुजरात आपको 30 रुपए से 35 रुपए दूध देता है पर लीटर पर, उत्तर प्रदेश 16 रुपए देता है,
आधा आधे से भी कम।
अब 14 रुपए उसकी खर्ची होती है, खर्चा होता है दूध, गाय को संभालना, दूध निकालना, दूध पहुंचाना, उसको 2 रुपए प्रॉफिट मिलते हैं। तो मेरा हमेशा कहना था, इस किताब में लिखा हूं, आप 2 रुपए उसका प्रॉफिट है गुजरात उत्तर प्रदेश में, संख्या के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, आप उसको 2 रुपए बदले 25-26 रुपए दे दो, 30 रुपए दे दो, उसका 2 रुपए प्रॉफिट सडनली आप क्या होता है 16 रुपए दे रहे हो, तो 14 रुपए और 2 16 रुपए उसका बन जाता है इनकम। तो 2 रुपए से 16 रुपए इनकम दुगना नहीं होता, 8 बार बंद हुए। अगर मोदी सरकार कहती है कि हम फार्मर्स को डबल इनकम दोगे, डबल इनकम के बाद आप दुगना दे सकते हो, खाली कॉपरेट बना दे, उनको ठीक प्राइस दो। पर वो जो 12-16 रुपए जो है वो आड़तिया लेकर जाता है, जो पॉलिटिशियन शेयर करता है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे कम पैसा दूध के लिए उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलता है, गुजरात को ज्यादा मिलता है। तमिलनाडु ने मिनिमम प्राइस 626 रुपीज रखा है, महाराष्ट्र में 18 रुपीज से 20 रुपीज देते थे, फिर जब लास्ट टाइम इलेक्शन से पहले उन्होंने 26 रुपीज का मिनिमम प्राइस रखा, तो महाराष्ट्र के पुआपने सब चिल्लाए 26 का हमारे से पड़वरता है, नहीं पड़वरता है। तो सरकार ने बोला अच्छा हम 5 रुपए सब्सिडी देंगे मिल्क पर, और महाराष्ट्र ने 5 रुपए सब्सिडी दिया, बैंगलोर में, उन्होंने बोले हम 15 रुपये सब्सिडी देंगे। तो उनका कोऑपरेटिव कुरियन के कोऑपरेटिव से अलग था। तो एक धक्का मिला महाराष्ट्र और कुरियन और वेस्ट बंगाल के कोऑपरेटिव में, जहाँ उन्होंने कुरियन के मॉडल को फॉलो करने के बदले अपना मॉडल निकाला जहाँ पॉलिटिशियंस को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उत्तर प्रदेश ने बिल्कुल सबसे खराब काम किया, वो है कोऑपरेटिव नहीं रखना है और फार्मर्स को ठीक प्राइस देना नहीं है। इसीलिए अगर आप देखोगे दूध का जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है गुजरात में, वो प्रोडक्शन इंक्रीज उतना नहीं है जो उत्तर प्रदेश में है। पिछले 4-5 साल में गुजरात ज़्यादा दूध बना रहा है उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से,
क्योंकि फार्मर इंसेंटिवाइज है ज़्यादा करने के लिए।
अगर 40 साल से मुझे मालूम है हर साल मेरा प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं दूध क्यों नहीं ज़्यादा बनाऊँ। अब दूध में एक और खूबी है, क्यों वो बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, दूध में कम से कम 10 करोड़ फार्मर्स है। एक फार्मर के पास 5 लोगों की फैमिली है, इसका 50 करोड़ लोग जिंदा है दूध के कारण। और दूध में कितना पैसा मिलता है, पुराने जमाने में जब साइंस की टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी नहीं थी, तो एक गाय से आपको करीबन 30 रुपये प्रॉफिट मिलता था पर डे 300 दिन के लिए, जब लैक्टेशन बंद होता था और नए इंसेमिनेशन की शुरुआत होती थी, पर 300 दिन के लिए आपको 30 रुपये मिलता था हर गाय के लिए। अभी आप जरा सा उनका फीडिंग हैबिट बंद कर दो, चेंज कर लो, उसका कॉस्ट भी जोड़ो, और गाय को जितना ज्यादा चलाओगे उतना ज्यादा दूध पैदा करेगी। तो बांध कर मत रखो, जैसा पुराने दिनों में गवैया गाय को लेकर जाता था गांव गांव से, वैसा करो, जितना चलेगी उतना दूध ज्यादा देगी। और गाय के लिए वही है, भैंस के लिए भी वही है। और उससे आज जो प्रॉफिट है पिछले 10 साल से 15 साल से, अगर ठीक खाना दोगे और ठीक चलाओगे तो, और उसका उसकी उसके उसके हेल्थ के बारे में देखोगे, तो आप देखोगे कि गाय, हर एक गाय से, हर एक भैंस से कम 100 रुपये हर दिन प्रॉफिट बनता है। अब ये गांव में आपके पास 2 गाय है, आपके पास जमीन नहीं है पर आपके झोपड़ी है, झोपड़ी के पीछे आप बांधते हो और दिन में सब जहां भी उसको खाना है लेकर जाते हैं संभाल के, कि वो प्लास्टिक नहीं खाए खाली, पत्ते खाए या कुछ और खाए या भूसा खाए। 100 रुपये प्रॉफिट एक गाय का, 200 रुपये हर दिन उसे प्रॉफिट मिलता है, गांव के लिए बहुत अच्छा है। 200 रुपये बहुत, 1000 से ज्यादा है शहर के 1000 से। और जो किसान है उसे मालूम नहीं किस तरह से बचत करना, तो वो ज्यादा सोच लेते हैं 6 महीने के लिए संभाल लें और फिर पैसे निकाल लें। गेहूं का पैसा 6 महीने में एक बार आता है, सब्जी का पैसा 3 महीने में एक बार आता है, गाय ऐसी चीज है पैसे हर दिन आते हैं। तो किसान का जो डेली एक्सपेंडिचर है वो निकलता है गाय से। अगर आप जब मिल्क प्रोडक्शन खराब करोगे तो ये मान लो इस देश में आंदोलन होने वाला है, 50 करोड़ लोगों की जिंदगी दूध पर डिपेंडेंट है।
और गवर्नमेंट की पॉलिसीज अभी सीएसडी,
अच्छा अभी यहां तक मैंने कह दिया। 2016 में हमने गाय हत्या के खिलाफ रूल्स निकाले, तो मैंने इसके तहत लिखा था, आपको जो भी कानून लाना है लाओ, पर किसानों को मत मारो। जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसको बेचने के लिए उसे 20,000 रुपये मिलते हैं एवरेज। अगर आपको उसे बोलना है कि आप बेच नहीं सकते हो तो आपको उसको 20,000 दे दो। दिल्ली में जब मैं इस बुक का उद्घाटन कर रहा था ORF में, तो मुझे ORF के ऑर्गेनाइजर ने बुला के आपको कोई बड़े आदमी मिलना चाहते हैं उनसे जरा मिल लीजिए। मैंने कहा नहीं, लॉन्च के बाद, तो मैं समझ गया पॉलिटिशियंस हैं, तो मैं मेरे डिस्कशन के बैठे थे आगे आगे और मुझे घूर कर देख रहे थे, और मीटिंग के बाद मुझे मिले, बोले साहिद जी आप जो कह रहे हैं वो गलत है। मैंने कहा क्या गलत है, बोला गौ अपनी माँ जैसी है। मैंने कहा रुको, एक चीज याद रखो, मैं अपनी माँ को खरीदता नहीं हूं, मैं गाय खरीदता हूं। जहां खरीदारी होती है वहां व्यापार होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते मैं गाय खरीदूं पर व्यापार नहीं करूं, वो गलत है। आपको कानून लाना है, कानून लाओ, पर उसको 20,000 दो नो, पर गौमूत्र उसके जो 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 उसका गोबर है उससे पैसे बनते हैं। मैं कहा आप ले लो ना, आप पैसे बनाओ, आप धनी हो गए, मैं ताली मारूंगा और क्या। आप किसान को क्यों कह रहे हो कि अलग तरीके से पैसे बनाने, वो एक ही तरीका जानते हैं, वो दूध जब गाय बूढ़ी हो जाती है वो बूढ़ी गाय को बेच देता है और नई गाय खरीदता है। अब आप उसके 20,000 रोकोगे, नई गाय नहीं खरीद सकता है, आप किसान को मार रहे हो ना। आज मैं वापस हमेशा जब भी आर्टिकल लिखता मैं कहता, मैं वही कहता हूं कि आप सरकार हो, आप कोई भी कानून ला सकते हो, कानून लाओ पर कॉम्पेंसेशन के बगैर नहीं। कॉम्पेंसेशन होना चाहिए, जहां आदमी को पेट में लात लात मिल लग रही है उसको 20,000 दे दो। और गाय का संभालना आपका काम है, उसमें ज्यादा खर्चा होता है। और आज जो लंपी काउ डिजीज आया है जिसके कारण गाय इतना दूध नहीं देती है, भैंस इतना दूध नहीं देती, उसका कारण यही है, आप बूढ़ी गाय के साथ उसके बिठाते हो। अब जो बूढ़ी गाय है उसको डिजीज होने वाला है, उस पर खर्चा करना जरूरी है, उसको आइसोलेट करना जरूरी है। अब किसान के पास चारा नहीं है ये सब करने के लिए। आप अपना कानून ला, आपको जो आपकी जो भी सभ्यता है उसका पालन करो, पर किसान को मत मारो। और ये किसान को मारने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस और भी थे। एक आपने बोला गाय को बेचना नहीं है तो सभी भैंस की तरफ जाने लगे, भैंस का वो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पर जब ट्रेडर भैंस की मांस को लेकर जा रहा है तो गौरक्षक रास्ते में बोलते नहीं उसमें गाय का मांस है, उसको रोको, उसका फोरेंसिक कराओ। अरे इस देश में फोरेंसिक्स ह्यूमंस के लिए नहीं है, आदमी के लिए नहीं है, आप उसकी फोरेंसिक्स जानवर के रखोगे क्या? और 4 दिन के लिए बिना रेफ्रिजरेशन वो गाड़ी उधर रुकी हुई है, जो भी मांस है वो खराब हो जाएगा, कोई खाएगा नहीं, तो लॉस किसको हुआ? ट्रेडर को हुआ। ट्रेडर को लॉस होगा तो वो खरीदेगा नहीं, तो वापस किसान को मार मिल रही है। और तीसरा उसका कॉन्सिक्वेंस रहता है कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, खाली 3 इंडस्ट्रीज थे, एक था गारमेंट्स टेक्सटाइल्स, दूसरा था लेदर और तीसरा था डायमंड्स। लेदर इज ए मैन पावर इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, क्योंकि आप उसे अलाउ नहीं करते। आपका मीट बीफ एक्सपोर्ट्स कम हुआ है, आपका लेदर एक्सपोर्ट्स कम हुआ है, वो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आपने उसको रोका है और एम्प्लॉयमेंट रोका है, आज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अगर इस देश का कल्याण होना है आपको एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को ज्यादा रिस्पेक्ट देना है, दूसरा किसानों को मारो मत। ये जो गौहत्या के रूल्स हैं वो किसानों को मार रही है। अगर आपको कानून लाना है तो आप कानून लाओ, आप गाय ले लो और किसान को 20,000 दो, क्योंकि वो पैसे से किसान नई गाय खरीदता है, नई भैंस खरीदता है। कुरियन ने जो किया उसने एक चीज किया, किसानों को कैसे ज्यादा पैसा मिले, सरकार से लेने के बगैर। आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हो, कुरियन ने आत्मनिर्भरता सिखाई 1950s, 1960s, 1970s, उन्होंने ज्यादा सिखाया। आप उसको भी तोड़ रहे हो। सब्सिडी बहुत खतरनाक चीज है, वो मिठाई की तरह आप टंगा रहे हो, वो बच्चे के दांत जाएंगे। कुरियन ने यह सिखाया कि इंपोर्ट्स मत करो। अभी 2018 RCEP रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात चल रही थी और पीयूष गोयल जाकर बोले हाँ हम न्यूजीलैंड से 5% उनका इंपोर्ट्स लेंगे। सोधी जो उस समय मुख्य था GCMMF के अमूल के का कस्टोडियन RS सोधी, उसने प्रेजेंटेशन भेजा कि एक टक्का भी लोगे इंपोर्ट के रूप में, वो देश को बर्बाद करेगा, किसानों को मारेगा। उसका कारण ये है कि जो गाय दूध देती है, भैंस दूध देता है, तो गर्मी के मौसम में कम देता है, सर्दी के मौसम में ज़्यादा देता है। तो जब भी सरप्लस दूध रहता है विंटर मंथ्स में, आप वो सरप्लस मिल्क को पाउडर में कन्वर्ट करते हो, पाउडर को प्रिजर्व करते हो, और गर्मी के मंथ्स में जो दूध उत्पादन कम रहता है, तो आप उसको मिक्स करके रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क में बेचते हो। तो उसी तरह से बैलेंस करते हो। और जहां प्रोडक्शन ज्यादा रहता है, उसको आप आइसक्रीम बनाते हो, उसको आप चीज बनाते हो, उसको बटर बनाते हो। ये बहुत अच्छी तरह बैलेंस किया जाता है। अगर आप अचानक इंपोर्ट अलाउ करोगे, पूरा बैलेंस जाएगा। और जिस तरीके से कुरियन ने इस इंडस्ट्री को बचाया है, ये सरकार बचा नहीं सकी तेल के इंडस्ट्री को। 1960s में हमारा 70% डोमेस्टिक प्रोडक्शन था ऑयल सीड्स का। आप इंपोर्ट करके कम भाव में बेच रहे थे, किसानों ने ऑयल सीड्स बोना कम कर दिया। आज हम 80% इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इंपोर्ट करोगे और किसान के मार्केट प्राइसिंग को तोड़ोगे, तो क्यों बना, क्यों उगाएगा वो, क्यों बोएगा वो सीड्स? वो बीज बोना बंद करेगा। आपको सीखना है क्या आप किस तरीके से आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो इंडस्ट्री को। आप खाली एडिबल ऑयल को देखो, 80% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा इंपोर्ट करने में आप खाली, आप हम उसको गारंटी दो ना, आप इतना ज्यादा पैसा दोगे अगले 5 साल के लिए, और 5 साल के बंद करो इंपोर्ट, और इंपोर्ट बंद अलाउ भी करोगे एनडीडीपी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, मार्केट प्राइस में बेचो, ट्रेडर को अलाउ मत करो मार्केट प्राइस तोड़ने के लिए।
बट अगर इंपोर्ट बंद कर देंगे तो फेयर ट्रेड नहीं होगा ना वर्ल्ड वाइड।
तो आप एनडीडीपी ने क्या किया, सरकार के पैसे लेने के बदले एनडीडीपी बिकेम सेल्फ फाइनेंसिंग। तो आपका जो भी इंपोर्ट है मैं इधर रखूंगा और लूंगा इंपोर्ट, पर मैं मार्केट प्राइस में बेचूंगा, किसानों का प्राइस नहीं तोड़ूंगा। वो वर्ल्ड ट्रेड के खिलाफ नहीं है। तो बैन मत करो, बैन प्राइवेट इंपोर्टर से बैन करो, एनडीडीपी जैसा ऑर्गेनाइजेशन तेल के लिए बनाओ जो सेल्फ फाइनेंसिंग हो, सरकार से पैसा नहीं लेता है, और जो भी सरप्लस आता है वो किसानों के लिए जाता है, वो अलाउड है। कुरियन ने जो क्रिएट किया, जो शुरुआत की, सब पूरी दुनिया चौंक गई, क्योंकि वो बिल्कुल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के मुताबिक था, एक भी रूल तोड़ा नहीं। पर सरकार की इच्छा है कि जहां भी हो मुझे अपनी उंगली लगाना है, जहां भी है उधर से मुझे फायदा निकालना है। जो भी किसान है उसका वोट चाहिए, इसका मतलब मुझे उसे पैसा देना है। एनडीडीपी क्यों पैसा दे, मैं दूंगा ना। यह राजनीति ने जिस तरीके से किसानों से खेला है वो अच्छा नहीं है देश के लिए, क्योंकि आज 50% जो पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है। जो रूरल पॉपुलेशन है वो कंज्यूमर्स है, जो कंज्यूमर्स है उनको परचेसिंग पावर मिलता है, उनका परचेसिंग पावर दूध से आता है। अगर वो परचेसिंग पावर कम होता है वो नहीं खरीदता है, इंडस्ट्री को अफेक्ट होता है, आपका पूरा इकोनॉमिक डिक्लाइन 1916 से देखिए जीडीपी का ग्रोथ रेट कम हो रहा है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि आपने किसानों का परचेसिंग पावर तोड़ा है।
डू यू थिंक, जिस्ट ऑन अ slightly diverse topic related to this as only, do you think कि government को जैसे चाइना करती है कि बाहर के लोगों को मतलब protect करके रखती है चाइना अपनी country को, इतने ज़्यादा imports allow नहीं करती, इतनी ज़्यादा technology बाहर की allow नहीं करती, इतनी ज़्यादा बाहर की और जो भी चीज़ चाइना के पास नहीं है सिर्फ वही allow करती है, बाकी सारी चीज़ें guard करके रखती है कि self reliant country के अंदर ही जो लोग उगाएंगे या product produce करेंगे उसी को हम use करेंगे। do you think that India को भी ऐसा करना चाहिए?
करना चाहिए, पर थोड़ी समझदारी से। मैं दो उदाहरण दूंगा। आज हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं।
आई विल जस्ट फ्रेम दिस प्रॉपरली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन भी जो हैं वो लोग भी यही बोलते हैं कि चाइना के पास अनफेयर एडवांटेज है बिकॉज उनकी गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती है कि बाहर का कोई भी आके आदमी अंदर आके बाहर से इतना पैसा लाके मार्केट को गड़बड़ नहीं कर सकता। जैसे इफ यू लुक एट मॉडर्न स्टार्टअप्स को भी आप देखोगे तो अमेजोन आया, इंडिया का नंबर वन प्लेयर बन गया, राइट। इंडियन प्लेयर्स जितने भी थे ई कॉमर्स में वो खत्म होते गए, बट अमेजोन को एंट्री नहीं मिली चाइना में, तभी वहाँ से प्लेयर उठ के आया अलीबाबा। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिनको अनफेयर एडवांटेज मिला और वो चाइना में आज खुद का उन्होंने इकोसिस्टम बना दिया, बट वो इंडिया में नहीं बना पाए।
बिल्कुल, अभी चाइना में अलीबाबा है, माइटवन है, पिंडोडो है, तीनों एक दूसरे से कंपीट करते हैं, पर भार का नहीं। भार का आएगा उस समय जब ये खुद मजबूत हो जाए। कोरियन यही कहता था, जब तक फार्मर मजबूत नहीं होगा तब तक आपको उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, देश पहला रहता है। अगर आपके पास खाना नहीं है तो आप पुराने जमाने के जैसे जाओगे का, भिखारी बनकर सब मुझे खाना चाहिए। एक और उदाहरण दे रहा हूं, आज हम चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और चाइना आपसे चावल खरीदने के लिए हमेशा तैयार है। अब चाइना के पास 3 गुना जमीन है इंडिया से, इंडिया के तुलना में। चाइना क्यों चावल नहीं उगा रहा है? उसको मालूम है हर एक किलो चावल के लिए आपको 2,000 लीटर पानी देना पड़ता है। और पानी की कीमत चाइना जानता है। हम पानी पर कोई प्राइस रखते नहीं है, फुकट में जा रहा है। तो पहला सब्सिडी जो फार्मर को मिल रहा है वो फर्टिलाइजर है, वो पानी है, वो बिजली है। उस सब्सिडी से भी जो प्राइस से जो जिस प्राइस पर आप चावल बेचते देश में वो इंटरनेशनल प्राइस से ऊंचा है, फिर आप एक्सपोर्ट करते हो वापस सब्सिडी दे रहे हो। चाइना खुश है, इंडिया के सब्सिडी से मुझे चावल मिल रहा है। अगर इंडिया में समझदारी है प्राइस, आप वाटर को प्राइस करोगे।
बट पानी पे अगर प्राइस कर देंगे तो बहुत ज्यादा
प्राइसिंग अलग तरीके से हो सकता है। आपको इतना प्राइस मिलेगा इस ले लो महाराष्ट्र की बात। महाराष्ट्र में इतना पैसा, इतना पानी निकलता है, इतना पानी हम सिटीजन के देंगे, इतना पानी हम इंडस्ट्री को देंगे, इतना पानी हम एग्रीकल्चर देंगे, किस किस एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए कितना देंगे, इतना कोटा आपका पानी है, उसके बाद आपको ये प्राइस भरना पड़ेगा।
तो लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे इस पे कि पानी पे भी चार्ज लगा दिया?
आपके पास पानी है तो लेकर आओ, ग्राउंड वाटर को बंद करो। ग्राउंड वाटर निकालोगे तो जैसे आपका वो उत्तराखंड में जमीन नीचे चले गई वही होगा इधर। और जितना आप जमीन का पानी निकालोगे उतना नमक आएगा जमीन में, और जो भी पानी मिलता है जमीन से वो सब खारी हो जाएगा। आप आज के लिए जीना चाहते हैं, कल के लिए आप क्या आप कुछ रखना नहीं चाहते हो क्या?
ओके, लास्ट टाइम मुझे याद है अपन ने एक बात करी थी पानी पे, नाउ दैट यू आर टॉकिंग, ओके, एंड यू टॉक्ड अबाउट कि इंडिया के पास ब्रह्मपुत्र है एंड चाइना और रशिया इंडिया से कभी भी हमेशा बना के ही रखेंगे, कभी भी अटैक नहीं करेंगे, कभी लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा लैंड जो वाटर रिजर्व है वो इंडिया के पास ही है।
कहिए, मैं बताऊंगा फिर।
तो आप मुझे बताओ इसके बारे में कि वाटर
पानी के बारे में, इसमें चैप्टर पेज 104 में आप एक टेबल देखोगे।
104
मुझे पेज याद है।
वाओ,
ओके,
कंट्रीज एंड द डीएनए।
अगर आप देखोगे एक जगह है वाटर एज अ परसेंटेज ऑफ लैंड,
या
आप वो नंबर देखिए,
इंडिया में 9.6,
इंडिया वाज 9.6। आप यूएसए का देखिए
7
है, और चाइना का देखिए
2.8।
किसके पास ज्यादा पानी है?
इंडिया के पास,
परसेंटेज वाइज इंडिया के पास। अभी चाइना की जमीन 3 गुना है, अभी अमेरिका की जमीन 3 गुना है। आप रशिया का देखिए
13%
और जमीन देखिए 3 गुना अमेरिका का, 3 गुना चाइना का, इसका 9 times बिगर देन इंडिया। सबसे ज्यादा पानी रशिया के पास है। रशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व्स। दुनिया का सबसे बड़ा लेक है वो है लेक बायताल रशिया में। चाइना के पास सबसे कम पानी है। और पुराने जमाने में सोचते थे चाइना अपनी ब्रह्मपुत्र को निगल लेगा, क्योंकि 2/3 ऑफ ब्रह्मपुत्र इज इन चाइना, ओनली 1/3 इज इन इंडिया. मैंने कहा कभी कभी भगवान दयालु है मैं. और जब पहला स्टडी हुआ, हाइड्रोलॉजिकल स्टडी हुआ 2000 में, 2001 2002 में हुआ, तो मालूम पड़ा कि ब्रह्मपुत्र 2/3 चाइना में हुआ पर वाटर कलेक्शन इन चाइना इज ओनली 20%. 60% ऑफ द वाटर कलेक्शन इन ब्रह्मपुत्र कम्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश.
ओके.
और 20% बाकी भारत में. इसीलिए अभी झगड़ा चल रहा है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर पानी. चाइना के पास पानी कम है. और 2009 में मैंने लिखा था, इसमें रेफरेंस दिया है, 2009 में मैं मिंट में लिखा कि चाइना इंडिया से झगड़ा ज्यादा नहीं करेगा क्योंकि उसको इंडिया का मार्केट में मार्केट पर थोड़ा ध्यान है. उसे पानी चाहिए. सबसे अच्छा सुझाव यही रहेगा कि चाइना और रशिया एक दूसरे से बात करें और चाइना और रशिया से पानी लें. उस समय सभी लोग मुझसे उस पर हंसने लगे क्योंकि चाइना और रशिया के बीच में रिश्ते खराब थे. जब मैं 2014 में गया था चाइना में, उधर भाषण दिया, मैंने कहा, एक लेक्चर दिया था, मैंने कहा आप लोग कोई ना कोई समय रशिया से बात करोगे पानी लेने के लिए. तो वहाँ मेरी काफ़ी निंदा की. उन्होंने बोले नहीं हो नहीं सकता. मैंने होगा. और थैंक्स टू यूक्रेन वॉर जो कुछ भी है, पर यूक्रेन वॉर से पहले भी 2018 में चाइना और रशिया ने एग्रीमेंट साइन किया और उधर से सीधा कनाल बनाने के लिए बात चालू हुई, काम चालू हुआ है. लेक बाईताल से पूरा पानी आएगा चाइना में और चाइना में सेंट्रल चाइना में. और वापस मैं एक और प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि जब जहाँ पानी आएगा वहाँ लोग आएंगे, वहाँ तरक्की होगी. अगले 10 साल में चाइना में एक और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा जहाँ सेंट्रल चाइना में इंडस्ट्रीज आएगी क्योंकि पानी है. और रशिया और चाइना और भी करीब होंगे क्योंकि चाइना रशिया पर डिपेंड करेगा पानी के लिए, ऑयल के लिए, गैस के लिए. और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि रशिया डूब जाए क्योंकि उसे अमेरिका का सामना नहीं करना पड़ेगा. इसलिए चाइना रशिया को प्रोटेक्ट करेगा. और चाइना ये नहीं चाहेगा कि इंडिया डूबे क्योंकि उसे यूएसए नहीं चाहिए इधर. तो चाइना अपना खेल खेल रहा है, इंडिया को अपना खेल खेलना पड़ेगा. पर चाइना हमेशा दुश्मन नहीं रहता है और चाइना हमेशा दोस्त भी नहीं रहता है. वो कंपेटिटर रहेगा, हमें अपनी निगरानी रखेगी रखना पड़ेगा जैसे वो अपनी निगरानी रखना. और एक और चीज़ याद रखिए, आप उस टेबल में देखिए, लेबर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखिए, इंडिया 104, इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए,
पॉपुलेशन मिलियंस, डेंसिटी स्क्वायर मीटर.
हाँ,
डेंसिटी स्क्वायर मीटर देखो.
हाँ,
इंडिया का है 399.3,
चाइना का देखिए
145.
डेंसिटी पॉपुलेशन चाइना में कम है. और बांग्लादेश का देखिए
1106.
बांग्लादेश का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतना बड़ा है, उसके बावजूद बांग्लादेश में जीडीपी पर कैपिटा इज हायर देन इंडिया. इसका बांग्लादेश की इकोनॉमिक पॉलिसी बेहतर है इंडिया से. वहां तरक्की हो रही है.
तो ऐसा क्या डिफरेंस है जो बांग्लादेश और इंडिया में है कि बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो बेटर है इंडिया से?
नहीं, जीडीपी कम है क्योंकि उसकी संख्या कम है.
पर कैपिटा इनकम, सॉरी
पर कैपिटा. जब बांग्लादेश की जमीन कम है, पर बांग्लादेश का वाटर देखिए इंडिया से कम है परसेंटेज. बांग्लादेश में,
बांग्लादेश वाटर इज 6.4,
इंडिया का 9 है,
9.6.
अब इंडिया के पास बड़ी जमीन है पर उसमें 9% वाटर है जो काफी है. पर हम वाटर को, वाटर की निंदा कर रहे हैं, वाटर का अब्यूज कर रहे हैं, वाटर को वेस्ट कर रहे हैं. अब गंगा देखिए ना, एक बार जो क्या आप क्या कहते हैं, नमामि गंगे, हम गंगा को साफ करेंगे. आप इसराइली से बात करेंगे, वो हंसकर बोलेंगे आप मुझे हमें बुलाए हैं साफ करने के, हम साफ कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं हमें. पर साफ तब होगा जब आप बंद करोगे ना जो गंदगी आ रही है गंगा में, उसको पहले बंद करो, उसके बाद में सफाई होती है ना। एक जगह सफाई हो रही है, ऊपर से गंदगी और भी भेज रहे हो।
तो डिफरेंस, वैसे डिफरेंस क्या है इंडिया और बांग्लादेश में?
पॉलिसी फ्रेमवर्क, जैसे मैंने कहा पानी के लिए, गंदगी पहले बंद करो। वो हम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल कनेक्शन और प्रॉफिट बन रहे हैं। गंदगी बंद करोगे तो मुझे अपना सीवेज टैंक बनाना पड़ेगा, सेप्टिक टैंक बनाना पड़ेगा, उसमें खर्चा रहता है, मुझे खर्चा करने की जो इच्छा नहीं है, भेजो ना पानी। दूसरी चीज, जब से शेख हसीना आई है तब से फंडामेंटलिज्म अलाउड नहीं है।
ओके,
बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम इस्लामिक रिपब्लिक है, पर बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि आपकी जो भी रिलीजन है आपको फ्रीडम है उसका प्रचार करने के लिए। तो आपने अपने आप अपने मंदिर में अगर दूसरों को बता सकते हैं हिंदुइज्म कितना अच्छा है, आप कानून के अंदर हो, पर आप जलूस निकालोगे तो गलत हो। और जहां भी आंदोलन हुआ है शेख हसीना उन्हें सीधा जेल में भेजी है, क्योंकि फंडामेंटलिज्म देश को बर्बाद करती है। तीसरी चीज, बांग्लादेश ने फोकस किया स्कूल एजुकेशन पर। अब परसों के दिन मैंने एक आर्टिकल लिखा है, मैं आपको भेज दूंगा। इंडिया का GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो स्कूल्स में 27% है, और आप कहते हैं आपका लिटरेसी 74% है। 27 और 74 काफी डिफरेंस है, और कारण यह है कि आपका जो लिटरेसी सेंसस बना रही है उसका कंडीशन खाली यह है कि आप अपना नाम लिखना और पढ़ना जानते हो। तो अगर मेरा नाम राम है, मुझे खाली 3 अक्षर सीखना है, 3 अक्षर लिखना है, 3 अक्षर पढ़ना है, और मैं लिटरेट हूं। आपका डेफिनेशन गलत है ना। इंडिया की लिटरेसी बहुत खराब है, बांग्लादेश स्कूल एजुकेशन इज मच बेटर। तो आपका एजुकेशन अच्छा है, आपका फंडामेंटल कंट्रोल में थोड़ा है, और आपका फोकस है जितना भी उत्पादन कर सको। वहां एक फैक्ट्री जो गारमेंट्स की है उसमें 11,000 लोग काम करते हैं, यूनियनिज्म नहीं है। आप बोले लेबर एक्सपोर्टेशन है, देश को जीना है, देश को एक्सपोर्ट करना है। आज स्थिति ऐसी, आप जाओ दुबई में, मैं दुबई जाता हूँ कई बार, आप भी जाते होंगे। मैं पिछले 6 महीने पहले मेरा जो ड्राइवर था टैक्सी वाला, वो बांग्लादेश से था। तो मैंने कहा आपके कितने साथी इधर है? बोले साथी यहाँ पर कम करेगा, नंबर्स कम हो रहे हैं। क्यों? बोले आजकल दुबई में कोई बांग्लादेशी आता नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की सैलरीज दुबई की सैलरी से अच्छा है। शुरुआत में एक्सपेक्टेशन होता है, धीरे धीरे सब बढ़ता है। इसलिए बांग्लादेश में थोड़ी आप देखोगे वो आपका जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो ज्यादा होने के बावजूद उन्होंने इतना किया है। पानी जरूरी है, और इसीलिए मैं वापस कह रहा हूं, चाइना रशिया पर डिपेंड करेगा, और चाइना नहीं चाहेगा कि रशिया डूबे, और रशिया नहीं चाहेगा कि चाइना बहुत महत्वपूर्ण। और चाइना की डेंसिटी पॉपुलेशन देख लीजिए, दुनिया में सबसे खराब डेंसिटी पॉपुलेशन रशिया की है।
एट पॉइंट फोर
इंडिया के 300 के खिलाफ, के सामने
399, इंडिया ऑलमोस्ट 400।
तो अगर 8.4 है, उनके पास लोग नहीं है, उनके पास जमीन है,
बहुत
9 times ज्यादा इंडिया से। इट इज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड, ऑफ ऑयल, ऑफ व्हाट यू कॉल इट, प्रेशियस मेटल्स, पर उनके पास लोग नहीं है। तो मैं पिछले 15 साल से 2009 से कह रहा हूं सरकार को, रशिया के साथ बात करो, जैसे सऊदी अरेबिया में लेबर कैंप बनाया है, आप इंडियंस को भेजो खान चालू करने के लिए, कोयला निकालने के लिए, सोना निकालने के लिए, जो भी प्रेशियस मेटल्स है वो निकालने के लिए, और जॉइंट प्रोडक्शन सिस्टम चालू करो, जैसे हमने तेल में किया है। आधे जो रशिया के जो ऑयल फील्ड्स है उसमें इंडियन ONGC का OVL पार्टनर है, आप उसी तरह कर लो ना। अब रशिया कई बार चाहता है चाइना से पूछे, पर चाइना उसके बाजू का नेबर है, एक बार चाइना के लोग आ गए तो निकलेंगे नहीं, वो स्क्वार्टर्स बन जाएंगे और रशिया वो नहीं चाहता है, पर इंडिया के लोग दूर हैं इसलिए उसको बुलाएंगे, क्योंकि वो हमेशा उधर रह नहीं सकते हैं, कॉमन बॉर्डर नहीं है, उनको भेजा जा सकता है। अपने पॉलिसीज थोड़े बदलने चाहिए, उससे इंडिया के लिए जॉब मिलेंगे, रशिया मजबूत हो जाता है, रशिया और इंडिया जितने करीब हो जाएंगे चाइना बीच में अटका है।
तो इंडिया वैसे वर्ल्ड लीडर कैसे बनेगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट, क्योंकि अभी
वर्ल्ड लीडर बनने के लिए तीन चीज चाहिए। एक, आपके पास धन चाहिए। अब धन दो तरीके के रहते हैं, एक धनी का धन है और पूरे देश का धन है, क्योंकि इंडिया के पास 140 करोड़ लोग हैं। हर एक आदमी अगर 1-2 रुपए देता है सरकार को टैक्सेस में, इनडायरेक्ट टैक्सेस, माचिस खरीदा तो उसके ऊपर GST आता है, कुछ भी खरीदा GST आता है, तो सरकार की आमदनी बनती है। तो भारत ऐसा देश बना है जहां सरकार अमीर है और लोग गरीब हैं, क्योंकि एक एक रुपए जाता है सरकार अमीर हो जाती है। तो अगर इंडिया का GDP बढ़ता है, सरकार अमीर है और लोग गरीब है, आपको लोगों को बढ़ाना है। जब लोग बढ़ जाएंगे, लोगों के पास धन ज्यादा हो, सरकार का भी धन बढ़ेगा, पर तब आत्मनिर्भरता का मान का मीनिंग सच रहेगा। दूसरी चीज है एजुकेशन, आपका स्कूल एजुकेशन। मैं जो 3-4 दिन पहले एजुकेशन पर आर्टिकल भेजूंगा, अभी भेजूंगा इस सेशन के बाद, आप उसको पढ़िए। 4 चार्ट्स हैं, एक चार्ट है GER पर, दूसरा चार्ट है 1 teacher school, स्कूल्स में टीचर नहीं है, एक टीचर से स्कूल पर चलता है, वही टीचर सभी क्लास को सिखाता है, वही टीचर सब सब्जेक्ट सिखाता है, उसकी संख्या देखिए कितने स्कूल्स है, 5 लाख के ऊपर है। तीसरा प्रॉब्लम है साइंस लेबोरेटरीज, खाली 40% सरकारी स्कूल में चाहिए साइंस लेबोरेटरी। आप केमिस्ट्री कैसे सीखोगे, बर्तनों से, घर में चूल्हे पर, जहां साइंस नहीं है वहां आपका आइडियोलॉजी आएगा। आप ज्यादा समय निकाल रहे हो किसकी किसका इतिहास लिखने के लिए, कौन सी भाषा सिखाने के लिए, कौन से रास्ते का नाम बदलने के लिए, कौन से इलाके का नाम बदलने के लिए, शहर का नाम बदलोगे। अरे साइंस सिखाओ ना, साइंस में न धर्म है न जाति है, पर साइंस के बगैर आप बढ़ोगे नहीं। और चौथा चीज है इंटरनेट, खाली 10% इंटरनेट स्कूलों में इंटरनेट है सरकारी स्कूल्स के, और आप कहते हो पूरा दुनिया को हम सिखाएंगे, अरे तुम्हारे खुद के लोग को जानते हैं, कुछ जानते नहीं है, और वो वोटर्स है तो अल्पबुद्धि वाले आपको वोट करेंगे। जब तक आप एजुकेशन इंप्रूव नहीं कर सकते हो तब तक वो सवाल नहीं पूछेंगे, वो ठीक तरह चुनेंगे नहीं, तब तक वो खुद आत्मनिर्भर नहीं होंगे, उनको सरकार से डोल चाहिए। इसलिए किसानों, साधारण आदमी, वो सब जरूरी है, सबको अपना सरकार से पैसा नहीं लेना चाहिए, पर सरकार को वोट चाहिए तो पैसे देगी। सरकार का स्वार्थ रहता है कि मुझे पैसे देने हैं, वोट लेने हैं, और एक सरकार की नहीं, सभी सरकार।
I read an article yesterday, okay, where it said कि इंडिया अभी इस दिस ईयर, इनफैक्ट नेक्स्ट 5 ईयर सबसे मेजर प्रोडक्शन हमारे ही होने वाला है अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया इज़ गोना बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स फॉर एवरीथिंग इन टोटल, राइट। हमारे बाद बाकी सारी कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया करने वाला है। तो रिसेशन अभी वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में अफेक्ट करेगा, UK सबसे ज़्यादा बैडली हिट होने वाला है, बाकी इंडिया को हिट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन और आउटपुट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है, राइट। सो व्हाट डू यू फील कि ये इंडिया का गोल्डन टाइम है कि नहीं है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि ये तो फैक्ट है पूरी वर्ल्ड पैसा इधर लगा रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इंडियंस के पास अभी मौका है एक्चुअली आगे बढ़ने का, In fact, I have two questions on this, okay? One is, give me your views on this, कि ये majority production जो इंडिया में होने वाला है, इससे क्या फायदा होगा देश में और क्या होगा, और ये होने वाला भी कि नहीं होने वाला है, that is one. Second is, how एक common इंसान जैसे मैं हूँ या मेरे जैसे जितने और लोग इसको देख रहे हैं, हम लोग इस opportunity का फायदा कैसे उठा सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, maybe with government, without government, क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम ये जो golden period इंडिया का start हो रहा है, ये जो अगले 10 साल हैं, इसमें इंडिविजुअल वेल्थ या सेल्फ रिलायंट होने का हम बहुत फास्टेस्ट हमारा सबसे बेटर चांस होगा.
इसमें दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी. एक, इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग सेंटर होगा. मेरे पास काफी क्वेश्चन मार्क्स इसके ऊपर है.
ओके.
ये प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा. वो थियरी लास्ट ईयर आई थी जब चाइना क्लोज था, उनके पास जीरो कोविड पॉलिसीज थी, चाइना का जीडीपी घट रहा था. अब इस साल चाइना ने खुला कर दिया है. इस टाइम पर चाइना का जीडीपी ग्रोथ 5.5% होगा. इंडिया कैरी थी 6.5 करेंगे. अभी वर्ल्ड बैंक का यस्टरडे फिगर जो आया है, कल जो फिगर आया था, 5.9 है. साल के एंड में मुझे लग रहा है चाइना का जीडीपी ग्रोथ इंडिया से परसेंटेज वाइज ज़्यादा होगा, और चाइना का जीडीपी फिगर जो है वो इंडिया से 7 गुना बड़ा है. तो 5% 7 गुना बड़ा होने के बावजूद हो रहा है, और हम 1/7 प्रोडक्शन पर 5.5 रहेंगे उनके बराबरी में. चाइना विल रिमेन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. हर एक देश जो दुनिया में कामयाब हुआ है,
ओके,
वो अपने नेबरहुड, अपने जो पड़ोसियों हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे संबंध रखता है और उन्हीं के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है. अधिकतर 40% से 60% एक्सपोर्ट इंपोर्ट उन देशों से होता है. इंडिया ने अपने नेबर्स में जो एक्सपोर्ट हुआ करता था उसकी परसेंटेज घट रही है, घट रही है, घट रही है. इंडिया का पूरा ध्यान जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में. आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर, आपके पीयूष गोयल यूके जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, हर एक जगह जाएंगे. ईस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा जाते नहीं है. इंडोनेशिया में नहीं जाएंगे, मलेशिया में नहीं जाएंगे.
और ऐसा क्यों है?
जो भी कारण हो, आपका जो आप इस जगह हो, आप ज्योग्राफी बदल नहीं सकते हो, आपका सबसे ज्यादा बिजनेस आपके एरिया में रहेगा. और यहां ये चार्ट दिखा रहा है कि आपका परसेंटेज कम हो रहा है. दूसरा चार्ट देखिए, जो कामत कह रहा है कि हम बढ़ेंगे. आप देखो, पैंडेमिक से पहले भी चाइना का उत्पादन ज्यादा था. चाइना का पैंडेमिक के बाद उसका और भी बढ़ रहा है. तो जो हम कहते हैं, मेंढक का जो वो है, दुनिया है, वो अपने कुएं में है. हम वैसे हैं, अरे अपना देश बढ़ रहा है, दूसरों को देखो कितना बढ़ रहा है चाइना में. आप तीसरा चार्ट देखिए,
लोअर टैरिफ्स.
जरा तीसरा देखिए,
यही वाला.
हाँ, ये वाला. इंडिया ने जो इंपोर्ट ड्यूटीज है अपने नेबरिंग देशों से और भी कम किया है चाइना से. फिर भी नेबर्स अपने साथ बिजनेस नहीं करना चाहते क्योंकि अपने रूल्स गलत है, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंडीशंस गलत है, आपने आपका जो प्रोसीजर, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर, वो बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है और फिर बहुत तकलीफें देता है. कोई करने के लिए तैयार नहीं है.
तो अगर हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हाँ, और वेस्टर्न वर्ल्ड पे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
ये रहा आपका जीईआर मेरे आर्टिकल में, मैंने आपको अभी भेजा हूं. यहां देखिए, पूरी इंडिया का जो एवरेज है वो है 27%, और इस देश में कोई राज्य ऐसे हैं जैसे अपना झारखंड जहां 70% है, जहां अपना छत्तीसगढ़ है 19% है जीईआर, और कहते हैं देश बढ़ रहा है. दूसरी चीज आप देखिए, यहां देखिए दूसरी चीज, ये दूसरा जो चार्ट है, ये आपका वन स्कूल टीचर्स में आप देखिए, इंडिया का 8% ऑफ स्कूल्स आर वन स्कूल टीचर्स. पर आप दूसरे राज्यों को देखिए, मान लो आप वेस्ट बंगाल में 80% ऑफ स्कूल वांट स्कूल टीचर्स। फिर आप लेबोरेटरीज देखिए, स्कूल वाइज इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी देश का 48% है एंड प्लेसेस लाइक बिहार हैव 20%। एंड बिहार इज अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, स्टेट सॉरी। और फिर आप लास्ट में लास्ट चार्ट कहाँ गया वो अपना लेबोरेटरीज का, हाँ स्कूल और लेबोरेटरीज पूरी देश का 48% है और उत्तर प्रदेश कहाँ गया, आंध्र प्रदेश 46%, तेलंगाना 26%, नागालैंड 25%। ये लेबोरेटरी साइंस लैब फैसिलिटी, ये चार चार्ट्स हैं, ये चार चार्ट सब दिखा दीजिए आपको, आपको मालूम पड़ेगा देश के एजुकेशन एजुकेशन स्टेट ऑफ इंडस्ट्री कैसी है। अब मैं दूसरा आर्टिकल लिख रहा हूँ हायर एजुकेशन पर, रिसर्च कर रहा हूँ अभी। आप इसको फिर देखिए और इसको देख लीजिए और फिर आपको मालूम पड़ेगा जो भी हम कह रहे हैं हम देश का सबसे बड़ा बनेंगे, हम नहीं बनेंगे सबसे देश का, चाइना हमारे साथ काफ़ी आगे बढ़ चुका है।
तो हम दुनिया में सबसे बड़े नहीं बने,
बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि दो चीज़ें हैं। आप जब 5% 7 गुने ऊपर 7 गुना बढ़ा हो के होने के बावजूद भी आप 5% बढ़ रहे हो और हम 1/7 पर 5% 5.5% बढ़ रहे हो, 10 साल बढ़ेगा 20 साल चलेगा फिर भी चाइना बढ़ा रहेगा। आप कहते हो चाइना का लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, हाँ चाइना का लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है तो क्या हुआ, जो कुछ भी जितना वो रोबोटाइज कर सकते हैं रोबोटाइज कर रहे हैं, उनके टेक्सटाइल प्लांट्स में खाली 4 लोग एम्प्लॉयड है, सब एवरीथिंग सब कुछ रोबोट्स में कर रहे हैं। चाइना में अगर लेबर कॉस्ट ज्यादा बढ़ता है तो कैपिटल कॉस्ट वो अफोर्ड कर सकता है इसलिए कंप्यूटराइज कर सकता है। इंडिया में आर्बिट्राज में अभी चाइना में सबसे बड़ा पोर्ट 10 लोगों खाली 10 लोग एम्प्लॉयड है, सब कुछ रोबोट है, सब कुछ ऑटोमेटेड है, 10 लोग आपके क्रेन से आते हैं, 10 लोग आपके कंटेनर्स मूव करते हैं, इवैक्यूएशन करते हैं, सब कंप्यूटराइज है। क्यों? क्योंकि लेबर कॉस्ट ऊंचा है। हमारे यहां कम से कम 1,000 लोग हैं क्योंकि वो कॉस्ट कंप्यूटराइजेशन का बहुत ऊंचा है, अपना लेबर थोड़ा चीप है। पर जहां लेबर की जरूरत है एग्रीकल्चर में आप उधर मार रहे हो, मिल्क प्रोडक्शन में उधर मार रहे हो। आप देखो ना कहां आपका वैल्यू ज्यादा बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा वैल्यू एडेड है एग्रीकल्चर में, सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू एडेड है गारमेंट्स और लेदर में, आप उधर दोनों जगह मार रहे हो, तीनों जगह।
तो व्हाट शुड वी डू, मतलब जो हम इंडियन ड्रीम की बात करते हैं,
पहले एजुकेशन बढ़ाओ। नो कंट्री कैन बिकम बिग विदाउट एजुकेशन। जब तक स्कूल का हर एक बच्चा को अपने अक्षर नहीं आते हैं, सेंटेंसेस नहीं पढ़ सकते हैं, गणित नहीं आती है और साइंस नहीं आता है, तब तक कोई देश बढ़ेगा नहीं। कल आपको ऐप यूज करना है या आपको अपना रिपोर्ट भेजना है जो आपके कुरियर सर्विसेज, वहां आज आपकी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आ रही है वो कुरियर सर्विसेज में। आप देखो ना जो भी आपके अब दुकान से कुछ खरीदते हो कुरियर वाला आता है, अमेजोन से खरीदते हो कुरियर वाला आता है, फ्लिपकार्ट से आता है, स्विगी खाना चाहिए कुरियर आता है। आप सड़क पर देखो कम से कम 5-10 कुरियर वाले दिखाई देंगे, उसकी संख्या बढ़ रही है क्योंकि आसान है ये लोगों से भिजवाना। पर उधर देखिए किसको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, जो फॉर्म भर सक रहे। आप विज्ञापन दीजिए आज सेक्रेटरी के लिए, आपके पास 1,000 एप्लीकेशन आएंगे, उसमें मैं हैरान हो जाऊंगा अगर 10 से ज्यादा काबिल रहे आपके लिए। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है पर एम्प्लॉयबल नहीं है।
तो जैसे अमेरिका ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया बाय ऑल्टरनेट एजुकेशन को प्रमोट करके,
एक तो ऑल्टरनेट एजुकेशन प्रमोट किया अमेरिका ने, और दूसरा है इमिग्रेशन पॉलिसीज फॉर मेक्सिको के वर्कर्स, 3 महीने के लिए आ सकते हैं कि आपके जो फल तोड़ने हैं टेक्सास में, आपका जो कॉटन निकालना है वो लेबर इंटेंसिव है, उसके लिए इमिग्रेशन अलाउ किया है। तो अमेरिका भी अपना पॉलिसी कर जानता है कि जहाँ लेबर चाहिए टेम्पररी, हमको बाहर की लेबर नहीं चाहिए, हमको बाहर लेबर है, आप उसको मार रहे हो। आपके सबसे ब्राइटेस्ट साइंटिस्ट क्यों इंडिया में नहीं रहते हैं?
क्यों नहीं रहते क्या?
क्योंकि यहां वो दर्जे का सैलरी नहीं मिलता है और वो दर्जे का कंफर्ट नहीं मिलता है। सरकारी कंडीशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत परेशानी करती है, सरकार बहुत परेशान कर सकता है आपको। अगर तरक्की करनी है, पहली चीज देश को देखना चाहिए वो है एजुकेशन। दूसरी चीज है हर एक को नौकरी मिलनी चाहिए, वो आत्मनिर्भर होना चाहिए, सरकारी डोल्स के बगैर वो पॉलिटिशियन तैयार नहीं है। उसको अच्छा लगता है आपकी बिजली माफ है, अब मुझे वोट दो, हम आपको खाना 5 किलो खाना मुफ्त में देंगे। वो बंद करो ना, लोगों को सचमुच आत्मनिर्भर बनाओ। उसके बाद पैसे नहीं आता, आप सिखाओगे ऐसे पैसे बनाने।
डू यू थिंक लेट्स से कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही इन चीज़ों पे, बट प्राइवेटली क्या इंडिविजुअल लोग इस पे फोकस करके, ये क्या अपॉर्चुनिटी है?
बहुत। आप देखिए अजीम प्रेम जी जो कर रहा है, स्कूलों को बदल रहा है, सरकार से हाथ जोड़कर सरकारी स्कूलों में बच्चों को अपलिफ्ट कर रहा है, ऊंचा बढ़ा रहा है, वो चीज़ अडानी भी वही कर रहा है। जब तक आप स्कूलों में, आप देखिए अपने मारवाड़ी जैन संस्थाओं में कई जो धनी हैं वो स्कूलों को अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे अडानी ग्रुप मुझे समझाता है कई बार, हम टीचर को ज्यादा सैलरी नहीं दे रहे, सरकारी टीचर्स को हमारे टीचर से ज्यादा पैसा मिलता है, हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं सरकारी टीचर से कम से मिलता है, पर हम कंट्रोल करते हैं, इनपुट मेजर करते हैं, आउटपुट मेजर करते हैं। हर हफ्ते टीचर को समझाना टीचर को बताना पड़ेगा क्यों जो लड़का जिसको 60% लास्ट ईयर मिला आज क्यों 62 नहीं मिल रहा है। तो टीचर को मालूम है उसके ऊपर किसी की निगरानी रहती है उस पर, और टीचर ज़्यादा समय लगाता है बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि उसकी जब मार्क्स आएंगे और मार्क्स दूसरे टीचर उसका चेकिंग करती है, और मॉडरेटर रहता है कोई एक्सटर्नल, तो उसके द्वारा आप एजुकेशन का स्टैंडर्ड इंप्रूव करते हो, बिकॉज चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं।
ओके, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच सर।
माय प्लेजर,
थैंक यू वंस अगेन। आई होप नेक्स्ट पॉडकास्ट हम जल्दी बनाएंगे और बहुत सारे बनाएंगे। एंड अभी हमने सिर्फ 2 चैप्टर्स बात करी, हम लोग बाकी के 5 चैप्टर्स भी बात करेंगे धीरे धीरे। एंड वी विल गो इन डेप्थ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन।
माय प्लेजर।
आप फिगरिंग आउट गिवर ऑफ द फेवरेट गेस्ट हो।
नो, थैंक यू।
थैंक यू फॉर डूइंग दिस।
थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट।
थैंक यू सो मच कि आपने ये पॉडकास्ट एंड तक देखा। इस पॉडकास्ट में आपको जो भी अच्छा लगा वो हमें कमेंट में बताओ। इस पॉडकास्ट में जो भी गंदा लगा वो भी हमें कमेंट में बताओ, ताकि हम अगले पॉडकास्ट में और भी बेटर कॉन्टेंट ला पाएं आपके लिए। एंड प्लीज़ शेयर दिस कॉन्टेंट विद एटलीस्ट 1 पर्सन। किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसकी लाइफ में एक नया आइडिया मिले उसे, और उस आइडिया से वो अपना कुछ नया काम स्टार्ट करे, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आए। क्योंकि एक आइडिया एक कॉन्वर्जेशन से जो आता है वो पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। एंड हम बस यही फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ आप तक पहुँचाएँ, आज के लीडर्स से समझ कर, उनसे बातें करके और उनकी आइडियोलॉजीज़ को स्प्रेड करके। थैंक यू सो मच। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट।